नमस्कार भारत, तारीख 17 जून, दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा के क्यूबा समझौते को तत्काल प्रभाव से किया रद्द।
The profits from investment and tourism flow directly to the military.
दार्जिलिंग में बेमियादी बंद का आज तीसरा दिन। उत्तर प्रदेश में शिया व सुन्नी वफ बोर्डों को भंग किए जाने पर राजनीति गरमाई।
उनके खिलाफ हमको शिकायत मिली थी, हमने उसमें जांचें कराई, जांच में पाया कि ये दो बार पाकिस्तान गए, वफ संपत्ति, शत्रु संपत्ति बेची है, इन्होंने वफ संपत्ति बेची है।
विवेचना में याद करेंगे सर संघ चालक बाला साहब देवरस को, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा सरकार के बीच हुए समझौते को रद्द कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि कम्युनिस्ट ऑपरेशन के नाम पर अमरीका चुप नहीं बैठेगा। दो साल पहले ही एक दूसरे के विरोधी रहे क्यूबा और अमरीका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हुई थी। ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के राजनयिक संबंध खत्म नहीं होंगे और क्यूबा में मौजूद अमरीकी दूतावास को बंद नहीं किया जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को एक करने वाले जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमुट कोल की मौत हो गई है। वो 87 साल के थे। वो 16 साल तक जर्मनी के चांसलर रहे थे। पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा मिटरैंड के साथ मिलकर पूरे यूरोप के लिए एक मुद्रा यूरो के बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। जर्मनी की मौजूदा चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि हेलमुट कोल को इतिहास याद रखेगा।
हेलमुट कोल वा एन ग्रोसर डॉयचर und ein großer Europäer.
हेलमुट कोल एक महान जर्मन और एक महान यूरोपीय थे। वास्तव में कहा जाए तो पिछले दशकों में जर्मनी की राजनीति में किए गए दो सबसे महत्वपूर्ण काम हेलमुट कोल की विरासत हैं। एक है हमारे देश का एकीकरण और दूसरा है यूरोप का एकीकरण। हेलमुट कोल समझ गए थे इन दोनों चीजों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पूर्वी इथियोपिया में पुरातत्वविदों ने की एक टीम ने एक पुराने शहर को खोज निकाला है। माना जा रहा है कि ये शहर 10वीं शताब्दी ईस्वी में मौजूद था। माना जा रहा है कि हरला इलाके में मिला ये शहर इस पूरे क्षेत्र में व्यापार का केंद्र रहा होगा। यहाँ पर पुरातत्वविदों को मिस्र, भारत और चीन की कलाकृतियां भी मिली है। पुरातत्वविदों को यहाँ 12वीं शताब्दी में बनी एक मस्जिद भी मिली है, जिसकी बनावट दक्षिणी तंजानिया और सोमाली लैंड में देखी जाने वाली मस्जिदों जैसी है। टीम के अध्यक्ष प्रोफेसर टिमोथी इंसॉल कहते हैं कि यह अफ्रीका में विभिन्न इस्लामिक समुदायों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण है। हो सकता है कि जैसा हमारा अनुमान है कि जैसे जैसे इस्लाम का विस्तार हुआ, यहाँ बसने वाले लोग खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। ये एक अलग थलग इलाका है और ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पानी की बेहतर सुविधा होगी, तो वो लोग पानी के लिए ऊपर के इलाके में और इस शहर को खाली छोड़कर चले गए होंगे। वो शायद हरला जैसे शहरों में बस गए होंगे जो आज इस इलाके में इस्लाम का एक बड़ा केंद्र है। पुरातत्वविदों की टीम के अध्यक्ष प्रोफेसर टिमोथी इंसोल। जापान के समुद्र तट के नजदीक अमरीकी नौसेना का एक जहाज फिलीपींस की एक मालवाहक जहाज से टकरा गया है। अमरीकी नौसेना के अनुसार अमरीकी जहाज यूएसएस फिट्ज़गेराल्ड अब अपने आप यूकोसुका की ओर जा रहा है। जापान कोस्ट गार्ड मौके पर पहुंच चुकी है। कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबरें मिल रही हैं। फिलीपींस की मालवाहक जहाज ACX क्रिस्टल के बारे में फिलहाल अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। अमरीकी राज्य मिनेसोटा में एक जूरी ने उस पुलिस अधिकारी को बरी कर दिया है जिन पर कथित यातायात अपराध के लिए एक अफ्रीकी अमरीकी व्यक्ति को गोली मारने का आरोप था। बीते साल जिस व्यक्ति फिलेंडो कैस्टिल को पुलिस अधिकारी गोली मार रहे थे, उनकी प्रेमिका फेसबुक पर इस पूरे वाकये का लाइव वीडियो प्रसारित कर रही थी। ये खबर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गई थी। वीडियो में सुना जा सकता था कि वो बार बार कह रही हैं कि प्लीज मुझे बताओ कि वह मरे नहीं हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शीत युद्ध के बाद 5 दशकों की दुश्मनी को त्याग कर 2015 में क्यूबा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और दोनों देशों में राजनयिक संबंध फिर से बहाल हुए थे। लेकिन अब वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि ये समझौता एक तरफा था। क्या है पूरा मामला, सुनते हैं मानसी दास से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा की सरकार के बीच हुए समझौते को रद्द कर रहे हैं। मियामी में क्यूबा अमरीकी लोगों के एक समारोह में ट्रंप ने कहा कि अमरीका साम्यवादी दमन यानी कम्युनिस्ट ऑपरेशन के नाम पर चुप नहीं बैठेगा।
The profits from investment and tourism flow directly to the military.
निवेश और पर्यटन से आने वाला मुनाफा सीधे सेना तक जाता है और प्रशासन को वहां से धन मिलता है क्योंकि इस उद्योग के वो मालिक हैं। पिछले प्रशासन के एग्जीक्यूटिव आदेश का नतीजा था सिर्फ और ज्यादा दमन और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश। इसीलिए मैं तुरंत प्रभाव से क्यूबा के साथ पिछले प्रशासन का पूरी तरह से ये एक तरफा समझौता रद्द करता हूँ। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ यात्रा और व्यापार संबंधी प्रतिबंधों को फिर से लगा दिया है, लेकिन इस कड़े कदम के साथ वो क्यूबा के साथ राजनयिक संबंध खत्म नहीं कर रहे हैं। क्यूबा के हवाना में मौजूद अमरीकी दूतावास को फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंध कैसे होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्यूबा अपने देश में गणतंत्र और आर्थिक सुधार लाने के लिए क्या कोशिशें करता है। 2 साल पहले यानी जुलाई 2015 में अमेरिका और क्यूबा 54 साल के विरोध को छोड़कर एक दूसरे के देश में 1961 से बंद हुए अपने दूतावास दोबारा खोलने पर राजी हो गए थे और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हुई थी। क्यूबा में फिदेल कैस्ट्रो की अगुवाई में हुई क्रांति के बाद दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए थे और अमेरिका ने क्यूबा से किसी तरह के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिए थे।
तो बराक ओबामा के क्यूबा समझौते को रद्द किया डोनाल्ड ट्रंप ने।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अमेरिका के बाद भारत। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में बुलाए गए बेमियादी बंद का आज तीसरा दिन है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बंद को गैर कानूनी करार दिया है। वहीं राज्य सरकार ने शांति की अपील की है। उधर बंद के आयोजक आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दार्जिलिंग से हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
अलग गोरखालैंड राज्य के समर्थन में आंदोलन कर रहे लोगों की आवाज मैंने तब रिकॉर्ड की जब वे कर्सियांग में दार्जिलिंग सिलीगुड़ी हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे थे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संपूर्ण बंद के तीसरे दिन आज स्थिति और बिगड़ने की आशंका है क्योंकि आंदोलन कर रहे लोगों ने आज से अपना विरोध और तीव्र करने का दावा किया है। ऐसे ही एक आंदोलनकारी उमेश गुरुंग ने कहा,
कल इससे तीन गुना जो हम लोग घर में जो बैठे हुए हैं उन सबको लेके कल हम लोग जैसे भी हो पहुंचेंगे।
पिछले 50 घंटों के दौरान दार्जिलिंग, कर्सियांग, कलिम्पोंग और मिरिक समेत समूचे पहाड़ी क्षेत्र और इससे लगे निचले इलाकों में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। आंदोलन के मुख्य केंद्र दार्जिलिंग में बंद का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विधायकों ने कोलकाता में कल देर शाम राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की। दार्जिलिंग के विधायक अमर सिंह राय ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें कहा है कि वे इस मामले में राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजेंगे।
बता दिया राज्यपाल के कि दार्जिलिंग में बहुत अत्याचार हो रहा है, हमारा सपोर्टर्स को मार दौर पकड़ कर और हमारा प्रेसिडेंट का घर में जाकर ये सब कर रहा है और सेंट्रल फोर्सेस ला रहा है हमारा मांग को सप्रेस करने के लिए, अनडेमोक्रेटिकली शासन चला रहा है।
इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बंद को गैर कानूनी करार दे दिया। कोर्ट ने इस मामले में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं को नोटिस भी भेजा है। अब इसकी सुनवाई 21 जून को होगी। उस दौरान गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि को अदालत में मौजूद रहना होगा। इधर गोरखा समुदाय की राजनीति करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर गई हैं। कभी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से अलग होकर जन आंदोलन पार्टी बनाने वाले हरका बहादुर छेत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पुलिस के जरिए लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। हरका बहादुर छेत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 7 आईपीएस अफसरों को दार्जिलिंग भेजा है। बंगाल पुलिस के अलावा सेंट्रल फोर्स की 14 कंपनियां भी पहाड़ पर प्रतिनियुक्त की गई हैं। बंद के कारण दार्जिलिंग की तमाम होटल, स्कूल, सरकारी कार्यालय, दुकानों, बैंक और उनके एटीएम पर भी ताले लटक गए हैं। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए दार्जिलिंग में।
तो जैसा कि आपने सुना, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में बंद का आज तीसरा दिन है। भारत प्रशासित कश्मीर के अनंतनाग जिले के अछाबल इलाके में संदिग्ध चरमपंथियों के हमले में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। वहीं सरकार ने 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी है। दक्षिण कश्मीर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और जानकारी के लिए देर रात हमारी सहयोगी मानसी ने बात की बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से।
एक्चुअली अनंतनाग जिले में ही 2 अलग अलग हमलों की खबर है ये। कल पहले तो एक एनकाउंटर हुआ जो बिजबिहाड़ा कस्बे में हुआ, लेकिन एनकाउंटर के कुछ घंटों बाद ही अछाबल, जो कि एक टूरिस्ट रिजॉर्ट भी है, वहां के इलाके के इंस्पेक्टर फेरोज डार अपनी पुलिस की टुकड़ी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी थे, एक टाटा सोमो में गश्त कर रहे थे अपने इलाके का, कि एक जगह पर आकर चरमपंथियों ने उनको घेर लिया और गाड़ी पर फायरिंग की, और उसके बाद गाड़ी के अंदर भी गए, उसके बाद भी फायरिंग की और उनका हथियार जो है वो छीनकर भाग गए। और इस घटना में जो इंस्पेक्टर फेरोज डार हैं वो अपनी पूरी पार्टी समेत जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर 6 पुलिसकर्मी हैं इंस्पेक्टर फेरोज डार समेत। तो पूरे इलाके में पहले से ही तनाव जारी था, क्योंकि बिजबिहाड़ा का जो एनकाउंटर है वो कई घंटों तक जारी रहा और सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों का दावा था कि वहां पर लश्कर तैयबा के कुख्यात चरमपंथी जुनैद मत्तू और उसके एक साथी छुपे हुए हैं। क्योंकि इस कार्रवाई में, इस ऑपरेशन में 2 मकान भी जलकर राख हो गए हैं, क्योंकि काफी देर तक गोलाबारी होती रही और इसमें एक परेशानी ये भी सुरक्षा बलों को उठानी पड़ी कि भारी संख्या में लोग वहां पर एनकाउंटर स्थल पर आ गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया और जवाबी कार्रवाई में उसमें भी 2 नागरिक मारे गए। तो सुरक्षा बलों का कहना है कि 2 मिलिटेंट मारे गए, हालांकि अभी तक बॉडी नहीं मिली है।
क्या पुलिस से आपकी बात हुई?
जी, पुलिस के साथ बात हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इंस्पेक्टर फेरोज डार समेत 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं।
रियाज मसरूर बता रहे थे कि किस तरह से दक्षिण कश्मीर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और संदिग्ध चरमपंथियों के हमले में 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों को भंग किए जाने संबंधी सरकार की कोशिशों के बाद इसे लेकर राजनीति गर्म है। भ्रष्टाचार के कथित आरोपों में घिरे इन दोनों बोर्डों को सरकार ने भंग करने और आरोपों की सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है। उधर वक्फ बोर्ड का कहना है कि सरकार इसे भंग नहीं कर सकती और वो इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
संपत्ति को लेकर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नई सरकार में भी इस विवाद की खबरें आती रहीं और शायद इसी वजह से सरकार ने दोनों ही बोर्डों को भंग करने का फैसला लिया है। राज्य के वक्फ मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बताते हैं,
दोनों चेयरमैन जो हमारे शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड के हैं, वो दोनों इसमें भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं। मैंने आदरणीय योगी जी को समस्त कारणों सहित उन दोनों चेयरमैनों को बर्खास्त करने के लिए लिखा है। इन दोनों ने बहुत भारी घोटाले किए हैं और उसमें एक पूर्व मंत्री जी का भी नाम आया है और जो जन शिकायतें आई उनकी भी जांच करा के उन सबको लिख के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिया सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है।
शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। केंद्रीय वक्फ काउंसिल ने पिछले दिनों इन आरोपों की जाँच में भी कई अनियमितताएं पाई थी। उन्हीं के आधार पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि पिछले दिनों मौजूदा वक्फ राज्य मंत्री मोहसिन रजा पर भी वक्फ की संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी कहते हैं किसी वजह से उन्हें इस मामले में लपेटा जा रहा है और वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे।
ये एक्शन का रिएक्शन है। श्री मोहसिन रजा जी जो राज्य मंत्री हैं उनके खिलाफ हमको शिकायत मिली थी, हमने उसमें जांचें कराई। जांच में पाया कि ये दो बार पाकिस्तान गए, वक्फ संपत्ति, शत्रु संपत्ति बेची है, इन्हीं ने वक्फ संपत्ति बेची है। कानून में CWC को जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है, वो कोई जांच एजेंसी नहीं है कि उससे जांच कराई है। तो कानून के दायरे की बातें अगर इस तरह की लीगल रिपोर्ट्स के ऊपर हमारे ऊपर कार्रवाई होगी तो हम अदालत देखेगी ना कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ।
वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दुरुपयोग के मामले में पिछली सरकार में कद्दावर मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का भी नाम कई बार आया है, लेकिन आजम खान अभी भी खुद को पाक साफ बता रहे हैं।
मेरे नाम पूरी दुनिया में कोई वक्फ की एक इंच जमीन नहीं है। जो जमीन जिस पर स्कूल बन रहा है उसे सरकार ने खाली कराया था, उस पर रिपोर्ट आ चुकी है। वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली बनाया है ट्रस्ट को, उसके अलावा हमसे कोई लेना देना नहीं।
अब देखना यह है कि मौजूदा वक्फ बोर्डों को भंग करने के बाद सरकार नए बोर्ड का गठन करती है या फिर वक्फ बोर्ड का मामला अदालती कार्रवाई में उलझता है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब आपको बताते हैं कि क्या है आज BBC इंडिया बोल का विषय।
BBC इंडिया बोल। खेती किसानी में लगातार घाटा, कर्ज का बढ़ता बोझ और आत्महत्या करते किसान, क्या आधुनिक भारत में खेतीहर की किसी को चिंता नहीं? मध्य प्रदेश में पुलिस गोलीबारी में किसानों की मौत के बाद क्या नरेंद्र मोदी सरकार जागेगी? यही है इस बार BBC इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 17 जून को मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो शाम को हमें आपके फोन कॉल की प्रतीक्षा रहेगी। और कार्यक्रम में अब अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। मानसी, अखबार क्या कह रहे हैं आज की? अबू सलेम हर जगह है,
हर जगह हर अखबार में फ्रंट पेज पर आज अबू सलेम की ही खबर है। अबू सलेम और 5 अन्य व्यक्तियों को कोर्ट ने दोषी पाया है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, मुस्तफ़ा दोसा, अबुल सलेम, ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल राशिद खान, करीमुल्ला खान और रियाज सिद्दीकी को स्पेशल कोर्ट ने दोषी पाया है। जनसत्ता का कहना है कि 1993 में हुए इन धमाकों में 250 से अधिक लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इधर एक खबर मैं पायोनियर से आपको बता दूँ, ब्लैक हेवन गोज स्विस बैंक्स टू पास इंडिया इन्फो, इस हेडिंग साथ पहले पन्ने पर काले धन पर लगाम कसने की खबर छापी है पायोनियर ने। स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देशों के लोगों के बैंक खातों, संदिग्ध काले धन से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान की स्वचालित व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया है। इसके अनुसार सितंबर 2019 से सरकार को भारतीयों के इस तरह के लेन देन से जुड़ी जानकारी सीधे सीधे मिलने लगेगी। एक खबर दैनिक जागरण से, इसके अनुसार केंद्र सरकार ने पैसों के लेन देन पर नजर रखने के लिए अपनी मंशा स्पष्ट की है और राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है कि हर बैंक खाते को अगले 6 महीने के भीतर यानी 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके बैंक खाते को निलंबित करने का अधिकार बैंकों को होगा। इधर एक खबर और इंडियन एक्सप्रेस से आपको बता दूं, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी हो रही है, आपको तो पता ही है। उम्मीदवार के नाम पर भाजपा नेता समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अखबार ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि BJP ने 4 नामांकन पत्र भी तैयार रखे हैं, लेकिन उन नामांकन पत्रों में उम्मीदवारों के नाम की जगह खाली
छोड़ी गई है कि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो नाम आपको समझ में आएगा वो उसमें भर देंगे और उसके बाद वो नामांकन पत्र दाखिल हो जाएगा। मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। कार्यक्रम में अब वक्त है विवेचना का। भारत की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद भूमिका रही है। RSS को नागपुर के मोहिते के बाड़े से बाहर निकालने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो है संघ के तीसरे सर संघ चालक बाला साहब देवरस। उनके कार्यकाल के दौरान देश के अंदर कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी। बिहार आंदोलन, आपातकाल की घोषणा, जनता पार्टी की जीत, अयोध्या आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस। बाला साहब देवरस की 21वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन पर नजर डाल रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
5 जून 1973 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर के देहावसान के बाद सभी स्वयंसेवकों को संबोधित उनके 3 सीलबंद लिफाफे खोले गए। पहले लिफाफे में एक पत्र था जिसमें उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि उनके बाद बाला साहब देवरस को RSS का सरसंघचालक बनाया जाए। कोलवलकर की तरह देवरस आरएसएस में देर से नहीं आए थे। 12 साल की उम्र में ही वो पहले सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगवार के प्रभाव में आ गए थे। कहा यह जाता है कि अब तक आरएसएस के जितने भी सरसंघ चालक हुए हैं उनमें बाला साहब देवरस का झुकाव राजनीति की तरफ सबसे ज्यादा था। राम बहादुर राय इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख होने के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और संघ परिवार से भी जुड़े रहे हैं।
बाला साहब देवरस का जो पिंड था, उनके व्यक्तित्व का जो केंद्र था, वो पॉलिटिकल था। कहना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई का जो अर्थ उन्होंने समझा था, जिसलिए वो आरएसएस में आए थे, और कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि संघ के संस्थापक को उन्होंने जिस तरह से समझा था, उससे उनको पढ़ने या उनको सुनने या उनको जानने के बाद मेरा मत भी है कि वे पूर्णतः राजनीतिक प्राणी थे, लेकिन इस अर्थ में राजनीतिक नहीं थे कि सत्ता के लिए वो स्वयं अपनी दावेदारी करते हों।
हेडगवार की तरह बाला साहब देवरस को भी उनकी व्यवहारिकता के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी ने एक बार कहा था,
गुरु गोलवलकर कहते थे कि जिन्होंने डॉक्टर हेडगवार को नहीं देखा हो उन्हें बाला साहब को देख लेना चाहिए। एक बार गुरुजी तांगे में बैठकर जा रहे थे और बाला साहब तांगे को रास्ता बताते हुए नीचे चल रहे थे। उनको पैदल चलता देख गुरुजी ने कहा कि असली सर संचालक तो पैदल चल रहे हैं और नकली सर संचालक तांगे में बैठकर चल रहे हैं।
देश की राजनीति में छात्रों का पहले पहल इस्तेमाल बाला साहब देवरस ने 1974 में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के दौरान किया। उसके बाद से भ्रष्ट और नाकारा सरकारों से इस्तीफा दिलवाने के लिए छात्रों को सड़क पर उतारकर आंदोलन चलवाना एक सर्वस्वीकृत दस्तूर बन गया। इसका अगला प्रयोग बिहार में किया गया।
ये 74 फरवरी वगैरह के आसपास की बात है, जब जेपी दिल्ली से आए तो उन दिनों एक छोटी सी खबर अखबारों में छपी थी कि जेपी की लंबी बातचीत बाला साहब देवरस से हुई है। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि बाला साहब देवरस से जो आपकी बातचीत हुई है, हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई। तो जेपी ने पहली बात तो ये कही कि बाला साहब देवरस से मेरी ये पहली मुलाकात थी, लेकिन मैं उनसे प्रभावित हूँ और उनसे मैंने पूछा कि आप हिंदुत्व तो क्या है यह बताइए। और उसका जो उन्होंने जवाब दिया उससे मैं प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदू वह है जो हिंदूपन का अभिमान छोड़ दे, और हिंदुत्व तो धर्म नहीं है, हिंदुत्व तो राष्ट्रीयता है। तो हम लोगों को लगा कि ये जेपी और बाला साहब देवरस में एक समझदारी है, वो विकसित हुई है।
संघ परिवार से जुड़े वरिष्ठ नेता गोविंदाचार्य भी मानते हैं कि 1974 के बिहार आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बढ़ चढ़कर भाग लेना बाला साहब देवरस के बिना संभव नहीं हो सकता था।
1974 का आंदोलन चल पड़ा जिसमें संघ इत्तेफाक से शान लिया गया, हमारे राम बहादुर के नाम मिसा वारंट जारी कर दिया गया। मैं तो आंदोलन में बहुत पेरिफेरी में बाहर था एक तरह से, लेकिन जब मिसा वारंट हो गया तो मैं शाखा जा नहीं सकता था, तो आंदोलन में लग गया। जयप्रकाश जी से जाकर मिलाया, वो भी आंदोलन में आ गए। तो अब इसके बाद संघ के कई लोगों को लगा जरूर कि ऐसा ना हो कि इसने अपने मन से किया है। तो अंत में बाला साहब देवरस ने जब वो बिहार के दौरे पर आए थे, लगभग समझे अप्रैल मिडल में, तब तक आंदोलन उफान पर था, तब उनको समझ में आया कि आंदोलन में सबकी सहभागिता है। उन्होंने स्टैंड लिया, लेकिन कि संघ का स्वयंसेवक भी जागरूक नागरिक है, संवेदनशील नागरिक है, तो समाज में हो रहे बदलाव और समाज के तकाजों को अनसुना कैसे कर सकता है।
1975 में आपातकाल के दौरान बाला साहब देवरस को गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। इसी दौरान आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध लगाया गया। जेल में रहने के दौरान देवरस ने इंदिरा गांधी को कई पत्र लिखे, जिसकी बाद में बहुत आलोचना भी हुई। राम बहादुर राय बताते हैं कि बाला साहब देवरस का ये कदम एक रणनीति के तहत था, लेकिन इसे आरएसएस के सामान्य कार्यकर्ताओं ने पसंद नहीं किया था।
उन दिनों जिन दिनों ये पत्र लिखा गया है, उन दिनों अंडरग्राउंड मूवमेंट में जो लोग भी थे, उन सब की ये कोशिश थी कि इंदिरा गांधी किसी तरह से चुनाव के लिए तैयार हो जाए। तो चुनाव के लिए तैयार होने के लिए अगर आरएसएस को कहीं माफ़ी भी मांगनी पड़े तो उसके लिए भी उन लोगों ने मन बना लिया था ताकि इंदिरा गांधी चुनाव के लिए तैयार हो। दिसंबर की 29 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी से एक फिरोज शाह रोड पर मैं मिला। उन दिनों वो हाउस अरेस्ट थे। मैंने वाजपेयी जी से पूछा कि आपकी ओम मेहता से भेंट हुई है, ओम मेहता शायद आपसे मिलने आए थे। तो वाजपेयी जी ने मजाक में कहा कि ओम मेहता बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनसे मिलने गया था। तो मैंने कहा कि हम लोग जो अंडरग्राउंड मूवमेंट में हैं उनके लिए इस बातचीत का क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि ओम मेहता ने मुझे एक लंबी लिस्ट दी है और ये कहा है कि विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जो रेलवे की पटरियां उखाड़ी गई हैं, हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, ये विद्यार्थी परिषद के लोगों ने किया, तो आप लोग माफ़ी मांगिए। बाला साहब देवरस की चिट्ठी पर भी आरएसएस में दो तरह की प्रतिक्रिया थी। एक जो टैक्टिकल लाइन का समर्थन करते थे वे मानते थे कि ये चिट्ठी ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से या जो लोग इस लड़ाई को एक सैद्धांतिक लड़ाई मानते थे वो उनको इस बात का अफसोस था कि बाला साहब देवरस ने ऐसी चिट्ठी लिखी।
बाला साहब देवरस के कार्यकाल के दौरान ही आरएसएस में मुसलमानों के प्रवेश का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में विचारार्थ आया था, लेकिन वो खारिज हुआ और देवरस संघ की परंपरागत सोच को नहीं बदल पाए।
मैं इसका साक्षी हूँ। देखिए 1975 के इमरजेंसी के दौरान मुस्लिम नेता और आरएसएस के नेता साथ साथ जेलों में थे और आपस में एक सौहार्द बना था, और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो शाही इमाम वगैरह भी आरएसएस के दफ्तर में जाते थे और मान लीजिए शाम की उनके नमाज का समय है तो वहाँ नमाज पढ़ते थे। इस तरह का एक सौहार्द बना था। और मुरारजी भाई की ये सलाह थी आरएसएस को कि आप आरएसएस को यानी संघ को हिंदुओं तक सीमित करने के बजाय आप उसको ओपन कर दीजिए, जिसमें मुसलमान भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, दूसरे लोग भी आ सकते हैं, गैर हिंदू भी आ सकते हैं। तो 1977 की जो प्रतिनिधि सभा हुई इस सवाल पर विचार हुआ, तो इस पर बहुत बहस हुई और उस बहस में बाला साहब देवरस का रुख ये था कि हमको ओपन करना चाहिए, लेकिन बाला साहब देवरस के जो प्रमुख सहयोगी थे जैसे यादवराव जोशी, मोरोपंत पिंगले, दत्तोपंत ठेंगड़े, मैं उस प्रतिनिधि सभा में था। उसमें जब बाला साहब के अलावा सभी इसके विरोध में जब खड़े हो गए तो उन्होंने अपने समापन में इस अध्याय को बंद किया। अगर बाला साहब देवरस पर निर्णय छोड़ा जाता तो संघ की शाखाओं पर वो सबको यानी उसको खुला छोड़ देते।
आडवाणी की रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं था। ये फैसला बहुत सोच समझकर बाला साहब देवरस के नेतृत्व वाले आरएसएस ने लिया था। प्रलय कानून को अपनी किताब आरएसएस ट्विस्ट विद पॉलिटिक्स में लिखते हैं,
राम जन्मभूमि और रथ यात्रा की वजह से ही संघ परिवार भारतीय राजनीति के कार्यक्षेत्र में घुस पाया, जिसमें कि वो अब तक कामयाब नहीं हो पाया था। अब ये उत्तर भारत के शहरी इलाकों के कुछ परंपरागत क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने सीमित उच्च जाति आधार को भी विस्तार देने की कोशिश कर रहा था। ये भी सच है कि मंडल का विरोध करने वाले उच्च जाति के युवा भी राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन में आखड़े हुए थे।
रेहान पतल, बीबीसी दिल्ली।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा की सरकार के बीच हुए समझौते को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका और क्यूबा के क्यूबा में मौजूद अमरीकी दूतावास को बंद नहीं किया जाएगा। पूर्व और पश्चिमी जर्मनी को एक करने वाले जर्मनी की पूर्व चांसलर हेलमुट कोल की मौत हो गई है। वो 87 साल के थे। पूर्वी इथियोपिया में पुरातत्वविदों की एक टीम ने एक पुराने शहर को खोज निकाला है। माना जा रहा है कि ये शहर 10वीं शताब्दी ईस्वी में मौजूद था।
जापान के समुद्र तट के नजदीक अमरीकी नौसेना का एक जहाज फिलीपींस की एक मालवाहक जहाज से टकरा गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।